ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदी हिंदी इंग्लिश हिंदी होता है। हिंदी आवाज जोर से आया इस हिंदी का। ठीक है, तो हम आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय एक, कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक संख्या 25। 25 आप कृपा करके दोहराइए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां समहिक्षिताम् पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेता कुरुनिति। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् कुरुनिति। भीष्म पितामह, द्रोण गुरुद्रोण, प्रमुखतः के समक्ष, सर्वेषां सबों के च भी महिक्षिताम्, संसार भर के राजा, उवाच कहा पार्थ हे पृथा के पुत्र, पश्य देखो एतान इन सबों को, समवेतान एकत्रित कुरुन कुरुवंश के सदस्यों को, इति इस प्रकार। भाषांतर तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहां पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं, जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा का कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन के पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो उससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दे दो तो हम भगवद गीता पढ़ेंगे, ठीक है? धन्यवाद आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पे बहुत वेरी बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है कि जैसे कोई फिल्म बनाते हैं या कोई ड्रामा बनाते हैं तो पहला सीन बहुत ऐसा एकदम सस्पेंस रहता है, उसके बाद फिर जो जो लीडर होता है या उसका जो मेन किरदार होता है वो एंट्री मारता है, एंड ऐसे होता है। सो दिस इज लाइक सेटिंग द सीन फॉर how Krishna comes as a Jagat Guru and then he saves not only Arjuna but saves all of us. तो हम सबको बचाने के लिए भगवान ये गीता देना चाहते हैं तो उसके लिए वो एकदम perfect setting बनाते हैं पहले। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी कि परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का बहुत बड़ा शाप दिया गया और परीक्षित महाराज कोई कंपनी के मैनेजर वगैरह नहीं थे, या कोई वो सब पूरे भारतवर्ष, तब भारतवर्ष मतलब पूरा पृथ्वी उसके राजा थे, तो उसका अगर मृत्यु 7 दिन में है तो बहुत बड़ा न्यूज़ था वो। और फिर वहां पे भागवतम आता है तो एकदम सस्पेंस बना के दिया जाता है। तो भगवान का यही एक उद्देश्य है कि हम ये समझे पढ़े, तो इसलिए यहां पे भी हम देखते हैं कि अगर महाभारत में हम देखते हैं कि सब दोनों में झगड़ा चल रहा है, और हम देखते हैं कि गांव में जो झगड़ा होता है सबसे थर्ड क्लास झगड़ा जो सब लोग आपस में बात करते हैं हमेशा, वो रहता है जो घर में जो झगड़ा होता है ना, दो भाई झगड़ रहे हैं, दो रिलेटिव झगड़ा करते हैं, वो तो एकदम दैट लाइक। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि घर में ही झगड़ा चल रहा है, बट वो झगड़ा क्योंकि वो लेवल का था तो पूरा विश्व उसमें शामिल हुआ था अभी, तो दोनों साइड खड़े हैं एक दूसरे को मारने के लिए। और अर्जुन, अगर आप पहले का श्लोक देखते हैं तो अर्जुन भी कोई ऐसा इरादा नहीं दिखता उनका कि उनको युद्ध नहीं करना है। वो बोलते हैं कि युत्से मानम अवेक्षेहम स एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। ये जो दुर्बुद्धि पुत्र है धृतराष्ट्र के, वो आए हैं लड़ाई करने के लिए, दिखाता हूँ उनको अभी, रथ लेके चलो वहां पे, ऐसे बोलते हैं। तो उनका कोई इरादा नहीं था कि अभी क्या करे कैसा करे, तो उन्होंने पूरा मन बना लिया था, अभी नहीं, पूरा जीवन वो वही था कि युद्ध करना है, जीतना है, एक अच्छा राज्य स्थापन करना है वगैरह। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान को जब बोला कि आप मेरा रथ लेके जाओ, तो भगवान तो रथ कहीं पे भी लेके जा सकते थे, शकुनि के आके जाके रुका सकते थे, है ना, या दुशासन के आगे जाके रुका सकते थे, दुर्योधन के जाके आगे रुका सकते थे, उन्होंने किसके सामने रुकाया, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, वो भीष्म और द्रोण खड़े थे उनके आगे जाके रुकाया उन्होंने। क्यों ऐसा किया? और बोल रहे देखो देखो, मतलब अभी देखा नहीं था क्या उन्होंने? द्रोण को पहली बार देख रहे थे, भीष्म को पहली बार देख रहे थे, पूरा जीवन उनके साथ बिताया उन्होंने, और अभी बोल रहे देखो, तो क्या देखो? अभी देखो, आप जिनको अपना समझते हो वही आपके सामने खड़े हैं युद्ध के लिए, तो अभी उनको देखो आपके प्रतिस्पर्धी के रूप में, अगर आप उस इतना कैपेसिटी है आप में ऐसा देखने का, तो देखो अभी, अभी तक तो आपने उनको दादाजी, गुरुजी, भाई ऐसे देखा, प्रतिस्पर्धी के रूप में कभी देखा नहीं था उनको, अभी देखो। तो ये कहने का आशय है भगवान का कि अभी तक ऐसा कभी देखा नहीं था, अभी देखो। तो बलदेव विद्याभूषण अपने टीका में वो लिखते हैं कि भगवान क्यों ऐसा बोल रहे कि देखो करके, और ये भी बताते हैं कि भगवान उनका परिहास कर रहे थे, जोक कर रहे थे, क्योंकि भगवान को पता था कि अभी एक सेकंड में नया सीन चालू होने वाला है कि पूरा अंदर का जो भौतिक आसक्ति है वो निकलने वाला है, और अर्जुन बोलने वाले हैं कि हरे कृष्णा, तो ये पता था कृष्णा को, तो इसलिए वो हंसकर बोल रहे हैं कि देखो। तो यहां पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ही जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। तो यहां पे जो भगवान है उनको एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत, जो पहले आया था, तो ऋषिकेश मतलब ऋषिक ईश, जो हमारे मन और इंद्रिय के स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश जो कृष्ण है। तो हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे जो इंद्रियां हैं उनका डिमांड क्या है, उसके ऊपर हमारा सब जीवन चलता है। तो भक्ति मतलब यही है कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि जब ऋषिक जो हमारे मन और इंद्रियां हैं वो जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसको भक्ति बोलते हैं। आंख हम भगवान को देखने के लिए, हाथ भगवान का मंदिर साफ करने के लिए, पैर भगवान के पास जाने के लिए, अलग अलग तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए, आवाज कीर्तन करने के लिए, कान भगवान के बारे में सुनने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको भक्ति बोलते हैं। तो ये इस्तेमाल करना आसान नहीं है स्पेसिफिकली कलयुग में, क्योंकि ये इंद्रिय और मन के बहुत सारे विषय है कृष्ण के अलावा जो हमको खींचते रहते हैं उनकी ओर, तो उसके कारण भगवान का भक्ति करना इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई हिमालय में रह रहा है, वहां पे है ही नहीं कुछ, जीवो नहीं है वहां पे, इंटरनेट जीना है लेकिन वो जीवो के बिना है, और दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो कोई सोच सकता है कि कुछ है ही नहीं तो गीता पढ़ते बैठेगा क्या करेगा वो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत सारे विषय है हमारे पास, तो मन और इंद्रियां तो विषय के पास जाएगा, लेकिन यहाँ पे उनको ऋषिकेश बोला गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम उनका भक्ति करते हैं तो वही इंद्रियां और मन, जितना अभी वो इंद्रिय तृप्ति में जाने के लिए आसक्त है, जितना वो भागना चाहता है जोर से इंद्रिय तृप्ति के ओर, और हम देखते हैं जब हम बाहर जाते हैं तो आप देखो ये लोग रिक्शा में बैठे होते हैं, वो रिक्शा अंदर बैठे हैं लेकिन वो बाहर देखते रहते हैं कि कौन जा रहे हैं, कहाँ पे कुछ अच्छा दिखने को मिल रहा है क्या, और जो बाहर से जा रहे हैं वो अंदर दिखते हैं रिक्शा में कौन बैठा है। तो यही चलता रहता है, लोग सोचते हैं कि कहीं तो अच्छा कुछ दिखने को मिले, आज का दिन निकल जाएगा, तो ऐसा कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक कृष्ण के प्रति आकर्षण थोड़ा न आए, जब वो आकर्षण आएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो यहां पे भगवान तो अर्जुन का भी टेस्ट ले रहे, कुरु सब सेना के बीच में वो द्रोणाचार्य और भीष्म के यहाँ पे आके रुकाते हैं। एक तो है कि टेस्ट किसका लिया जाता है, अनपढ़ लोगों का टेस्ट नहीं लिया जाता है, जो पढ़ाई किया है उसका ही टेस्ट लिया जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि एलकेजी यूकेजी में टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट थोड़ा बाद में आता है। तो यहां पे भगवान टेस्ट कर रहे हैं अर्जुन का, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा है, दिमाग है, ज्ञान भी है, तो उसका टेस्ट करना चाहते थे कि कहां तक आए हैं ये। तो हमारे जीवन में भी जैसे भगवान को पता है कि कहाँ पे टेस्ट लेना है ना। अर्जुन का टेस्ट उन्होंने 10 साल पहले लिया होता ना तो कुछ अलग होता था, उनको पता था कि कब टेस्ट लेना है और कैसे लेना है, कौन सा परिस्थिति एकदम बेस्ट है टेस्ट लेने के लिए। वैसे ही हमारे जीवन में भी जब टेस्ट आता है वो अपने आप नहीं आता है, तो हमको विश्वास होना चाहिए कि वो टेस्ट भी उतना ही भगवान के कारण ही आ रहा है जितना अर्जुन के जीवन में भगवान के कारण आया। तो जो टेस्ट है वो हवा से आकाश से गिरता नहीं है, वो टेस्ट दिया जाता है हमको या तो माया या तो कृष्णा, दोनों टेस्ट देते रहते। तो एक बार मैं कथा में किसी ने पूछा, एक भक्त कथा दे रहे थे कि महाराज हम अपने आप को टेस्ट कैसे करें कि हम कितना एडवांस्ड है वगैरह ऐसा। वो बोले देखो तुम्हारा स्थिति नहीं है टेस्ट करने का, हर क्षण आपका टेस्ट हो रहा है ऑलरेडी, माया और कृष्णा आपका टेस्ट ले रहे हैं हर समय, उसको पास करो, टेस्ट पेपर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो दिया जाता है आपको। तो यहां पे भी हम देखते हैं हमारे जीवन में भी जो टेस्टिंग होता है वो जब हम भगवान का शरण लिए हैं तो भगवान टेस्ट लेते हैं। तो ये जो टेस्ट है अगर हमने हमने देखा है ना, जब हम कॉलेज में थे तो जैसे कोई टेस्ट के लिए जाते हैं हम एग्जाम हॉल में तो हर एक का एकदम टेंशन रहता है, जाते हैं वहां पे, पेपर देखते हैं पहले कि क्या क्या आया है पूरा। कुछ कुछ लोग दो सेक्शन छोड़ दिए होते हैं पढ़ाई करते वक्त, कुछ कुछ लोग पहला सेक्शन छोड़ देते हैं बाकी के करते हैं, कुछ कुछ लोग है ना ऐसे ही होता है ना, पूरा छोड़ देते हैं। तो ऐसे सब आते हैं तो हम देखते हैं कि जब सबको पेपर दिया जाता है ना तो एक तो पेपर को देखते हैं पहले, दूसरा हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या है सबका। तो उसमें वो पेपर देखने के बाद दो चार लोग नाम लिखते हैं नंबर लिखते हैं और खड़े हो जाते हैं पेपर दे देते हैं, बोलते क्यों टाइम पास करने का। जाते हैं, दूसरे लोग है जय श्री राधा रास बिहारी जी की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौरनिताय की, श्री प्रभुपाद की। दूसरे है वो थोड़ा बैठ के सोचते हैं कि अभी कौन सा क्या कैसे करना है क्या लिखना है वगैरह। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लोग पेपर देख के ही उड़ जाते हैं, कुछ लोग बैठ जाते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है कि कौन कौन उठेगा कौन बैठेगा? हाँ हाँ, जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया है वो बैठा रहेगा, जिसने प्रिपरेशन नहीं किया है वो उड़ जाएगा वो। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हम देखते हैं अगर हमने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया तो उठ जाएगा और उड़ जाएगा वो, उड़ा दिया जाएगा, माया उड़ा देगी हमको। और जो प्रिपरेशन किया है वो रहेगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि जब कोई कृष्ण भावना में आते हैं हम, तो हम प्रिपरेशन कितना है, क्योंकि वो प्रिपरेशन हमारे ऊपर है, वो प्रिपरेशन दूसरा कोई करने वाला नहीं है हमारे लिए, है ना। जो जैसे एग्जाम का पढ़ाई है वो आपके लिए आपके पिताजी नहीं कर सकते, वो आपका भाई नहीं कर सकता है। वैसे ही कृष्ण भावना में भी जो कृष्णा कॉन्शियस प्रिपरेशन जो है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे लिए हमारा काउंसलर, टेंपल प्रेसिडेंट, दोस्त वो नहीं करेगा, वो किया भी तो कुछ आपको। इसलिए प्रभुपाद जी भी बोलते हैं एक जगह पे कि वी हैव टू फ्लाई अवर ओन प्लेन। जैसे जब जो फाइटर प्लेन रहते हैं ना, उसमें एक ही सीट रहता है, ऐसे नहीं कि पांच छह लोग घूमने के लिए जाते हैं फाइटर प्लेन में, वो एक ही सीट रहता है वहां पे, क्योंकि वो छोटा रहता है और बहुत कुछ काम करना होता है तो एक ही सीट रहता है। तो उसको सब समझाया जाता है, देखो ये बटन इसका है, ये बटन लाल है दबाने का नहीं कभी, ये है मीटर है, सब बताया जाता है उसको। लेकिन जब अंदर बैठता है वो नहीं बोल सकता कि तुम बैठो मेरे साथ, अभी सब बताया है, अभी उड़ो। सो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हम सबको ये जो माया के साथ हमारा जो युद्ध है वो हर एक को पर्सनली वो करना होता है, हमारे लिए दूसरा कोई नहीं कर सकता है, दूसरे उसके लिए सहायता कर सकते हैं, उसके लिए आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन जो युद्ध है वो हमको लड़ना है। तो एक तो चीज है यहां पे कि भगवान उनका सहायता तो कर रहे हैं रथ चलाने का, लेकिन अब ये जब उनका चेतना जो उनका आसक्ति है उसके ऊपर जब जा रहे हैं, तो भगवान आप देखेंगे कि आगे चुप रहते हैं, सुनते हैं उनसे कि क्या, वो अलग अलग कारण देते हैं, अलग अलग चीज बोलते हैं, भगवान कुछ नहीं बोलते, बोलते ठीक है बताओ। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे से प्रिपरेशन किया है वो उसका जो चेतना होता है टेस्ट जब आता है, और जो जिसने प्रिपरेशन नहीं किया है और टेस्ट आता है, तो दोनों का रिएक्शन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए अगर समझो किसी जगह पे आग लग जाता है, तो कहीं पे आग लग जाता है तो जनरली आम तौर पर रिएक्शन क्या होता है कि भागो, जान बचाओ, तो भय तुरंत आ जाता है आग लगने पर। लेकिन कुछ लोग जो ट्रेंड है, जैसे वो फायर फाइटर्स जो रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आग लगता है तो कैसे आग के अंदर घुसने का, आग कहां से आया है उसका एक जायजा लेने का, आग किसके कारण है तो बुझाने के लिए क्या करना है, पानी डालना है, रेत डालना है कि क्या करना है, तो वो सब उनको बताया जाता है। तो जैसे ही वो ट्रेंड आदमी आग देखता है, धुआं, तो भागता नहीं है, वो आग में कूद जाता है, वो कि अभी ट्रेनिंग किस काम का, फिर तो कूद जाता है अंदर ताकि उसको बुझाए। बाकी जो ट्रेंड नहीं है वो भाग जाते हैं। वो तो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि टेस्ट तो आएगा, रोज आएगा, आते रहेगा, तो कौन टिकेगा जो ट्रेंड है। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से भक्ति का अभी करने का प्रयास कर रहे हैं मंदिर में रहके, तो ये समझना चाहिए कि रोज हमारा क्या ट्रेनिंग हो रहा है, आज क्या हमने सीखा, वो हमको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम रह रहे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हैं तो फिर क्या फायदा, तो वैसे के वैसे रहेंगे, धुआं निकलेगा तो हम भाग जाएंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे कि आप देखो, तो भगवान यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि सिर्फ बाह्य रूप से मत देखो कि कौन कौन खड़ा है, अभी आपका ये समय है देखने का कि आपका अंदर का आसक्ति का है कि ये जो पूरा सेकंड चैप्टर है, तो ये हमारा जो आसक्ति है ये शरीर से, शरीर के साथ जितने भी लोग हैं उनसे, वो आसक्ति मिटाने के लिए गीता बोला गया है, क्योंकि उसका रूट है आसक्ति में। वो आसक्ति खत्म करने के लिए कृष्ण भगवद गीता दे रहे हैं अर्जुन को। तो अर्जुन का मेन प्रॉब्लम आसक्ति है। आसक्ति अपने क्या है, कुछ लोगों को फाइटिंग करना बहुत पसंद आता है, लेकिन जब फाइटिंग अपनों से होता है ना, इतना आसान नहीं होता है। दूसरे के साथ तो बहुत फाइट करेंगे हम, कुछ लोग अपने नेबर के साथ फाइट करने में फेमस रहते हैं, कुछ लोग ट्रेन में फाइट करने के लिए बहुत उतावले रहते हैं, या ऐसा कुछ है तो बहुत फाइट करते हैं। लेकिन जब फाइट करना है जो अपने हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनसे फाइट करना मुश्किल है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जब हम अपने लोग आगे आ जाते हैं प्रतिस्पर्धी के रूप में या आपके दुश्मन के रूप में, तो हमारा जो आसक्ति है वो ऊपर आता है। तो हम देखते हैं कि अपने जीवन में भी जब हम कृष्ण भावना के प्रति थोड़ा रुचि लेना स्टार्ट करते हैं, तो पूरा हमारा जीवन चेंज हो जाता है। तो हमारे सब सगे संबंधी, आजू बाजू के लोग, ये कमेंट फेमस हो जाता है, पहले अच्छा था, क्या हो गया, चाय भी छोड़ दिया ऐसा बाकी सब ठीक है लेकिन चाय भी छोड़ दिया। तो ये जो कमेंट आने लगते हैं, और ये कमेंट जब अपनों से आने लगते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोई जब भगवान के प्रति समर्पित होने का भाव रखता है, उसको तो और ये परिस्थिति में टेस्टिंग से जाना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि टेस्ट सब जगह पे है, माया भी टेस्ट लेती है, कृष्ण भी टेस्ट लेते हैं, टेस्ट से बचा नहीं जा सकता है। तो टेस्ट तो देना ही है सबको, आज नहीं तो कल। टेस्ट से बचेंगे, बच नहीं पाते हैं, टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कोई बोल सकता है कि नहीं, दसवीं का एग्जाम नहीं दूंगा मैं, ठीक है अभी मत दो, नेक्स्ट टाइम दो, एक साल के बाद देना ही पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट है उसके प्रति हमारा जो देखने का जो तरीका है वो यही होना चाहिए कि आज नहीं तो कल इससे गुजरना है, वाई नॉट नाउ, मैं वो क्यों उसको पोस्टपोन करूं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा था कि कभी कभी लगता है कि क्या हम बहुत जल्दी कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना, इतना क्या, इतना भी क्या जल्दी है। लेकिन एक भक्त बता रहे थे कि जैसे कि आपको बीमारी हो जाता है, अभी ये कोरोना के सीजन में आपको बुखार आ जाता है, तो आप क्या बोलते हो कि ठीक है 10-15 दिन बाद देखेंगे, अभी थोड़ा सा दूसरा माहौल चल रहा है वो देखते हैं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। जब बीमारी आ जाता है तो दूसरा कुछ हम सोचते नहीं है, वो प्रायोरिटी हो जाता है हमारा कि जितना जल्दी हो सके उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं हम। तो वैसे ही जब कोई सिचुएशन है हमारे जीवन में, कृष्ण भावना से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि हम ये सब भौतिक जो भी क्लेश है उनसे छुटकारा प्राप्त करके भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो ये जो भवरोग है उससे हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर मामूली एक कोई बुखार से इतना हम सीरियसली लेते हैं, उसको पहला प्रायोरिटी डालते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, तो भवरोग को तो कितना फर्स्ट प्रायोरिटी डालना चाहिए? दैट शुड बिकम जीरो प्रायोरिटी बिफोर ऑल अदर प्रायोरिटीज। तो अगर हम इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है कि ये जो आसक्ति है उसको कैसे हम लांग सकते हैं, कैसे उसको काट सकते हैं, तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को अभी धीरे धीरे गाइड करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये जो अनर्थ जो है हमारे खुद के अंदर, और पहला जो है वो जो अपनों के प्रति एक आसक्ति का भाव जो रहता है, वो एक बहुत बड़ा भक्ति में बाधक हो सकता है। क्यों? ये जो आसक्ति है वो कोई भी अच्छी चीज करने में बाधक हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति में ही। कितने सारे जवान अपने माता पिता को छोड़ के लड़ाई करने के लिए जाते हैं चाइना बॉर्डर पे, कितने सारे लोग पढ़ाई के कारण घर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाते हैं, कितने सारे लोग हैं जो घर तो छोड़ो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं जॉब करने के लिए। तो ये दुनिया में कौन घर नहीं छोड़ता है, मुझे बताइए। सब लोग घर छोड़ते हैं किसी न किसी कारण से, किसी को पैसा कमाना है, किसी को नाम कमाना है, तो किसी को कृष्ण कमाना है, तो क्यों ना वो छोड़े। तो सब लोग तो कुछ न किस न चीज के लिए सब छोड़ देते हैं। तो ये अगर हम टाइम पे जो चीजें हैं वो छोड़ना है, जैसे बच्चे होते हैं, कुछ कुछ आदतें होती है, वो चूसते हैं ना, वो बच्चे देखा है ना, या आपने किया भी होगा। तो पिताजी हाथ निकालते हैं हमेशा, हम चूसते रहते हैं, फिर वो कुछ बांधते हैं यहाँ पे ताकि हम ना चूसे, या तीखा लगा जाते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ तो करते हैं वो। तो ये आदत है, वो छोड़ना चाहिए, वो छूट जाता है। तो वैसे ही ये जो आदतें हैं हमारे, एक तो है कि बाह्य रूप से हम छोड़ना, इसलिए भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। एक चीज है कि बाह्य रूप से हमारी आसक्तियां हैं वो छोड़ना, और दूसरा है अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, क्षात्र धर्म, देश धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, या सोसाइटी धर्म, या जो भी अलग अलग हैं। भगवान बोलते हैं कि अगर आप मेरा भक्ति करते हैं तो बाकी सब उसमें इंक्लूड है, उसमें ही आता है वो, अगर आप सिर्फ भक्ति करते हैं तो। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं, ये सब सर्वधर्मान परित्यज्य, उसमें एक धर्म भी है, उसको बोलते हैं मनोधर्म। मनोधर्म मतलब अटैच टू ओन माइंड एंड सेंसेस, जो हम मन में ये विचार है कि ये सही है, ये शरीर जो है वो बहुत बहुमूल्य है, और जो मेरा ओपिनियन है वो बहुत बहुमूल्य है, और मैं जो सोचता हूँ वही सबसे बढ़िया है, तो उसको भी छोड़ना है हमको, ताकि हम कृष्ण के मत को, कृष्ण के ओपिनियन को सही मान के उसके ऊपर चले। तो वो भी छोड़ना पड़ेगा एक दिन हमको, जब हम भक्ति कर रहे हैं तभी हम भगवान की अच्छे अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन है उनके पास तो अस्त्र शस्त्र की कुछ कमी नहीं है, लेकिन वो अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए जो एक ये उसका उनका जो आसक्ति है वो बीच में आ रहा है अभी, तो अगर वो चला जाएगा तो उनका सेवा बहुत सुचारू रूप से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो अनर्थ है हमारे जीवन में वो धीरे धीरे घटाना चाहिए भक्ति में। जैसे बच्चे लोग धीरे धीरे एक 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 जो उनका हैबिट है वो छोड़ते हैं क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं अभी, वैसे ही हमारे जीवन में भी हमको देखना चाहिए कि जो हमारे आदतें हैं, जो कृष्ण भावना के प्रति हमारा जो गति है उसको अवरोध प्राप्त होता है उससे, उसको छोड़ना चाहिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये बहुत इम्पोर्टेंट एक कहानी बताते हैं कि ये जो आसक्ति होता है, भौतिक आसक्ति हम बोल रहे हैं, ये दुनिया के और दुनिया के लोगों के प्रति, वो आसक्ति जब तक जाएगा नहीं तब तक हमारा भक्ति आगे नहीं बढ़ता है। तो एक उदाहरण देते हैं वो कि एक गांव में एक आदमी का शादी तय हुआ, और आपको तो पता है कि गांव में होता है वो बहुत बड़ा बारात लेके जाते हैं, वो जगह पे अकेले नहीं जाते, 100, 400, 500 ऐसे लोग जाते हैं भर भर के, और बड़ा उत्सव होता है, 2-3 दिन होता है। और तो ये दूल्हा था, दुल्हन थी नदी के उस पार, थोड़ा एक 10 किलोमीटर दूर था, तो नदी से जाना था उनको। और जो मुहूर्त था वो सुबह का था, तो वो सोचे कि सुबह सुबह जाना ठीक नहीं है क्योंकि मुहूर्त निकल ना जाए, तो उन्होंने सोचा कि रात को हम निकलेंगे, बहुत सुबह पहुंच जाएंगे और फिर रेडी होके शादी हो जाएगा। तो रात को निकले वो, उन्होंने जो बोट वगैरह है वो ऑलरेडी फिक्स किया था, तो सब लोग बैठ गए बोट में। वो बोटमैन को, जो बोट चलाने वाला था, उनको बोल दिया कि देखो हमको पहुंचना है, हमारा टाइम पे है, शादी है, लेट नहीं कर सकते हैं। और बोला आप चिंता मत करो, आप आराम करो, मैं यही तो हमारा काम है, अब तक जिंदगी में मैं 10,000 बार गया हूँ, आप चिंता मत करो। तो बोले पक्का? बोला पक्का, आप चिंता मत करो। तो बैठ गए, पूरा एकदम अंधेरा था, हवा एकदम बहरा था, तो और इसने चालू किया नाव चलाना। तो जब नाव चला रहा था, हवा इतना सुंदर आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि एकदम सब शांत था, इतना शांत था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहे। बोले क्या बात है, हमारा नौका इतना स्मूथ कैसे चल रहा है? लेकिन बोला शायद नौका वाला बहुत अच्छा चला रहा है इसलिए इतना स्मूथ जा रहा है। तो सब लोग सो गए और सुबह उठ गए सब लोग, जब सूरज निकल के आया तो जो देखा उन्होंने वो तो पागल हो गए, वो उनको तो शॉक लगा कि जहां से निकले थे वहीं पे थे वो। तो बहुत गुस्सा करने लगे वो जो नाविक था कि अरे बोला तुम पागल, हमने आपको पैसा दिया इतना और तुम रात भर क्या सो गए थे क्या? बोला नहीं नहीं सोया नहीं था, देखो हाथ दर्द कर रहे हैं मेरे, रात भर मैं चलाया नाव। तो बोले रात भर चलाया तो यहाँ पे कैसे है फिर? तो फिर उन्होंने देखा कि जो एंकर होता है ना वो निकालना भूल गए थे, जो डालते हैं ना वो जमीन के जमीन में। वैसे ही हमारे जीवन में भी ये जो आसक्ति है ये दुनिया के प्रति, वो अगर हम निकाले नहीं, वैसे का वैसे रखा, और कितना भी हमने प्रयास किया भक्ति में आगे बढ़ने का, जब हम उठेंगे देखेंगे वहीं पे हैं 10 साल बाद 20 साल बाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में अगर हमको आगे जाना है तो। कि ये आसक्ति हम छोड़े, और ये आसक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आसक्ति छोड़ने का एक ही उपाय है कि भगवान की शरण लेना, और जब तक हम खुद उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं वो छूटेगा नहीं। ऐसा है, जय श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गोनिताय की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।